हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मल्लिका को अपने असली रूप में आया देखकर विक्रांत ने उसे छोड़ दिया था। उसने दोनों हाथ बांधकर उसके सामने खड़ा होकर कहा, तो तुम अपने असली रूप में आ ही गई हो, तुम्हें क्या लगा तुम विक्रांत रंधावा को डरा पाओगी और उसकी जान ले लोगी? ऐसा कहते हुए विक्रांत ने अपनी एक उंगली मल्लिका के करीब ले जाकर दिखाते हुए कहा, एक बात कान खोलकर सुन ले काली शक्तियों की चुड़ैल, मेरा नाम विक्रांत रंधावा है और मैं कौन हूँ कौन नहीं इसका तुम्हें आलम भी नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। और याद रखना काली शक्तियों की चुड़ैल, अगर तुम इस बार मेरे रास्ते में आई तो विक्रांत रंधावा तुम पर किसी भी तरह का कोई रहम नहीं खाएगा और एक पल नहीं लगाएगा तुम्हारी जान लेने में या फिर तुम्हारे अंदर जो काला साया है उसे बाहर निकालने में, समझी तुम? जैसे ही मल्लिका ने विक्रांत की ये धमकी सुनी उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि विक्रांत रंधावा उसका पूरा सच जानता होगा। साथ ही साथ उसने उसकी जान लेने की धमकी भी दे डाली थी। इसका मतलब साफ था, मल्लिका समझ चुकी थी कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं खड़ा था, उसके सामने कोई बहुत ही शक्तिशाली इंसान खड़ा था जो एक पल में ही कुछ भी करने की ताकत रखता था। ये सोचते ही मल्लिका का पूरा जिस्म पसीने से तर हो गया था। तब विक्रांत ने उसके बालों को कस कर पकड़ लिया था और बोला था, तेरी ये बाहरी खूबसूरती है ना, मुझे एक पल नहीं लगेगा इसे मिटाने में, समझी तम? और हाँ, एक बात याद रखना, भूल से भी गलती से भी तारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम उसके कितने खिलाफ हो। तो याद रखना, अगर तुमने गलती से भी तारा को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं एक पल नहीं लगाऊंगा तुम्हारी जान लेने में और मैं तुम्हारी हालत बद से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा, समझी तुम? विक्रांत रंधावा ने बड़ी ही दीवानगी से ये कहा था। विक्रांत रंधावा की तारा के लिए ऐसी दीवानगी देखकर मल्लिका कांप कर रह गई थी और फिर टूटी टूटी जुबान में बोली, आखिर आप हैं कौन और तारा को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? शायद आपको ये नहीं पता है, तारा अमन सिंह राठौर की बीवी है। तो उसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार चल क्या रहा है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तारा की शादी जिन महाराज यानी अमन सिंह राठौर से हो गई है और एक मामूली इंसान के लिए आपके दिल में इतना सॉफ्ट कॉर्नर, इतना जुनून, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मल्लिका ने अपने सवाल विक्रांत से कर दिए थे। दरअसल वो वाकई विक्रांत और तारा का सच जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि एक मामूली सी लड़की के पीछे विक्रांत रंधावा इतना दीवाना क्यों है, क्यों वो उसके पीछे इतना पागल है। सही मायने में कहा जाए तो मल्लिका को अब जलन होने लगी थी। वो सोच रही थी कि तारा के पीछे इतने खूबसूरत आदमी पड़े हुए थे, लेकिन वो थी जिसे कोई घास तक डालने को तैयार नहीं था, जबकि उसके पास भी बहुत ही खूबसूरत जिस्म था। चाहे वो बाहरी ही क्यों ना हो, दिखावटी ही क्यों ना हो, खूबसूरत जिस्म तो था ना, फिर क्यों उसके पीछे कोई नहीं था? मल्लिका ने विक्रांत से अपने सवाल कर डाले थे। अब विक्रांत की आंखों में खून उतर आया था। वो बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तो दो कौड़ी की चुड़ैल मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे मेरा और तारा का रिश्ता पूछती है, तो होती कौन है पूछने वाली? जब तुझे मैंने समझा दिया है कि एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरी तारा के आसपास भी नहीं भटकेगी, तो मतलब नहीं भटकेगी, मुझे वापस से अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है। और याद रखना मल्लिका, तुम्हारे पीछे चाहे किसी का भी हाथ हो, मैं किसी को भी जड़ से उखाड़ने की ताकत और हिम्मत दोनों ही रखता हूँ, समझी तुम? और अगर तुमने मेरा सच किसी से भी कहने बताने की कोशिश की तो मैं उसी पल तुम्हारे जिस्म से इस काले साए को दूर कर दूंगा और फिर तुम्हारी जो ये खूबसूरती है वो एक ही पल में ढल कर उस बुढ़िया में बदल जाएगी। मैं जानता हूँ, मैंने तुझे बुढ़िया कहा था, इसीलिए तुझे मुझ पर शक हुआ था और मैं जानता था कि तुम कुछ न कुछ ऐसी हरकत जरूर करोगी। लेकिन याद रखना, विक्रांत रंधावा नाम है मेरा, मुझे अपने रास्ते में अपने मकसद के बीच में आने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं उनके जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुझे एक बार जीने का मौका दे रहा हूँ, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के बाद तू मेरे लिए काम करेगी। जैसे ही मल्लिका ने ये सुना, उसकी आंखें हैरत से फटी रह गई थीं। आखिर उसे किस काम की जरूरत थी, ये उसे क्या काम करवाना चाहता था? तब विक्रांत रंधावा ने मल्लिका से कहा, तुझे मेरे लिए क्या काम करना है ये मैं तुझे वक्त आने पर बता भी दूंगा और समझा भी दूंगा। अभी तो अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दे और जा, जहाँ रहती है वहाँ चली जा, और मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है, और वापस से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। और याद रखना, तुम्हें मेरा काम कब, कैसे और क्या करना है ये बहुत जल्द मैं तुझे बता दूंगा, समझी? मल्लिका ने विक्रांत की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। उसके तो विक्रांत के सामने जुबान ही नहीं खुल रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विक्रांत ने मल्लिका के बालों को छोड़ दिया था, और बालों को छूटते ही मल्लिका सांप सी तेजी से वहां से गायब हो चुकी थी। और फिर विक्रांत उसे जाता हुआ देखकर एक जहरीली मुस्कराहट से हंसने लगा था और अपनी गाड़ी में सवार होकर अमन के बंगले की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अमन और तारा एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठे थे, एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। सच तो ये था कि अमन आज काफी डर गया था। उसे लगने लगा था कि काली शक्तियों का निशान अब तारा बन चुकी है, और वहीं तारा को लगने लगा था कि उस राक्षस के अंश का निशान अब अमन बन गया है। तो सही मायने में कहा जाए तो उन दोनों की फिक्र होने लगी थी, और वे दोनों ही नहीं चाहते थे कि उनमें से किसी को कुछ भी हो, क्योंकि वे दोनों एक साथ एक फैमिली की तरह जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं तारा परी इस बात को मानती थी कि उसकी जिंदगी इस पृथ्वी पर केवल कुछ ही दिनों के लिए है, जब तक कि उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक ही वो इस पृथ्वी पर रह सकती है, उसके बाद उसे जल्द से जल्द परलोक लौटना होगा, इससे पहले कि वो राक्षस मूर्छित अवस्था से बाहर निकल आए, क्योंकि अगर वो राक्षस एक बार मूर्छित अवस्था से बाहर निकल गया तो वो सब कुछ तबाह कर देगा। वो पूरा परीलोक तो नष्ट कर ही देगा, साथ ही साथ वो पूरा पृथ्वी लोक भी नष्ट कर देगा, क्योंकि उसे अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ तारा परी का खूबसूरत जिस्म। उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, और इसीलिए उसने मूर्छित अवस्था में भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना एक अंश इस पृथ्वी पर भेज दिया था, तारा परी को पाने के लिए, उसके जिस्म का स्वाद पाने के लिए, क्योंकि वो हर पल हर वक्त सिर्फ और सिर्फ तारा के जिस्म को पाना चाहता था, वो उसके साथ रहना चाहता था, इसीलिए उसने उसे अपना दूसरा जन्म निश्चित किया था, और अपनी माँ के द्वारा दिए गए वरदानों का प्रयोग करके वो इतना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था कि उसका मुकाबला करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, इसीलिए तारा परी का बच्चा ही उसका मुकाबला कर सकता था। अमन ने तारा का सर अपने कंधे पर रखा हुआ था और दोनों ही बातें करते करते न जाने कब नींद के आगोश में सो गए थे। तारा बहुत ही ज्यादा अमन के पास खुद को सेफ महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई दुख दर्द नहीं है जब तक अमन उसके पास है, इसीलिए वो किसी भी कीमत पर अमन को कुछ भी नहीं होने देगी। उसने ठान लिया था कि वो अमन की हर हाल में रक्षा करके रहेगी।
वहीं विक्रांत रंधावा जल्दी ही उसकी ओर रवाना हो चुका था। उसने भी सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द अमन को अपने रास्ते से हटा कर रहेगा, क्योंकि जब तक वो अमन को अपने रास्ते से नहीं हटाएगा वो तारा को नहीं पा पाएगा, और तारा को पाना हर हाल में उसके लिए जरूरी था। अगर वो इंसानी रूप में तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लेता है तो उसके पेट में जो बच्चा है वो तो मर ही जाएगा, साथ ही साथ अमन भी उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो इसीलिए उसने मल्लिका को अपने साथ मिला लिया था, और मल्लिका मान भी गई थी, क्योंकि मल्लिका के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके सामने विक्रांत रंधावा खड़ा हुआ था, और मल्लिका को समझने में देर नहीं लगी थी कि विक्रांत रंधावा कोई मामूली इंसान नहीं है, तो इसीलिए उसने उसकी बात मानने में ही अपनी भलाई समझी थी। अब विक्रांत उसे क्या काम देने वाला था वो तो उसे आने वाला वक्त ही बताने वाला था, लेकिन हाँ इतना तो जरूर था कि विक्रांत जो उसे काम देने वाला था उसे करने में मल्लिका को बहुत ही ज्यादा खुशी होने वाली थी। जल्दी ही विक्रांत अमन सिंह राठौर के बंगले में पहुंच चुका था और उसे काफी ज्यादा खामोशी सी लगी थी, तो वो समझ चुका था कि जरूर सब के सब अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए होंगे। लेकिन तभी वहां पर एक नौकर आ गया था। उसने कहा, करिश्मा मैडम ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लगवा दूं, क्योंकि मैडम एक जरूरी काम से बाहर गई हैं। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने ये सुना वो एक जहरीली मुस्कुराहट से हंसने लगा था और बोला, और अमन और मिस तारा कहां कहाँ हैं? तब नौकर ने जवाब दिया, वो दोनों अपने कमरे में हैं। तब नौकर से विक्रांत रंधावा ने कहा, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं खाना खुद खा लूँगा। ऐसा कहकर विक्रांत रंधावा अपने कमरे में चला गया था और वहां जाकर जल्दी ही वो एक काले धुएं में बदल गया था।